लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम बुरे और भले को पहचानने का विवेक सीखें, जीवन पथ को चुनना सीखें तथा उन सभी चीजों को अस्वीकार करें जो हमें यीशु मसीह और उनके सुसमाचार से दूर ले जाती हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, मानव जीवन में प्रार्थना एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है जो हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। प्रार्थना हमारे लिए उस मजबूत धागे की भांति है जो हमें इस भौतिक जीवन में एक दूसरे के संग, दूरियों के रहते हुए भी अपनों के संग उसी भांति संयुक्त रहने में मदद करता है, जैसे किसी एक सुंदर माला में पुष्प एक दूसरे से जुड़े या गुथे हुए होते हों। मानव के जीवन में प्रार्थना वह अदृश्य मजबूत डोर है जो हमें हमारे जीवन को उस दिव्य उद्गम से पिरोए रखता है जहाँ से हमारी सृष्टि हुई है। यह मानव के लिए उस गर्भनाल की भांति है जिसके द्वारा ईश्वर मानव का आध्यात्मिक भरण पोषण करते हैं। श्रोताओं, वर्ष के सत्र में ही सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार हमारे लिए प्रार्थना के सार और उसमें निहित शक्ति को व्यक्त करता है। यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखलाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए स्वयं में इस बात की परख करें कि मैं व्यक्तिगत रूप में किस तरह प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करने का अर्थ मेरे लिए क्या है? क्या मैंने अपने जीवन में प्रार्थना के महत्व को समझा है जिसके कारण मैं उसकी आवश्यकता का अनुभव करता हूँ?
एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए जैसे योहन ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। फिर यीशु ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में से कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त, मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहाँ पहुँचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग न करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं, हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ न दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें प्रार्थना में निहित शक्ति को जानने और समझने की कृपा प्रदान करें, जिससे हम अपने जीवन में उसकी आवश्यकता का अनुभव करते हुए स्वेच्छा से इसे पूरा कर सकें, जो सदैव ही हमारे जीवन में नवीनता का कारण बनती है। श्रोताओं, उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए प्रार्थना के एक महत्वपूर्ण आयाम को व्यक्त करता है, जहां हम विश्वास के पिता अब्राहम को अपने ईश्वर से दूसरों के लिए विनय याचना करते हुए सुनते हैं। साधारणतः प्रार्थना करते हुए हम स्वयं में अपने लिए ईश्वर से चीजों और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निवेदन करते हैं, लेकिन पहले पाठ में अब्राहम सोदोम और गोमोरा के लिए याचना करते हैं कि याहवे वहां के विश्वासियों को नष्ट ना करें। अब्राहम की विनय प्रार्थना सुनी जाती है। श्रोताओं, यहां हम मध्यस्थ प्रार्थना की प्रभावकारिता को पाते हैं, अर्थात हम किसी से प्रार्थना का निवेदन करते हैं, हमारे लिए कोई प्रार्थना करता है और उनकी प्रार्थना के माध्यम हमारे जीवन की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। यह हमारे लिए प्रार्थना में व्याप्त शक्ति को व्यक्त करता है, जहां हम किसी की भलाई की चाह और आशा करते हुए उनके लिए सच्चे हृदय से याचना करते हैं। यह हमारे लिए इस सच्चाई को भी प्रकट करता है कि ईश्वर हम में से हर किसी को दूसरों के लिए आशीष और कृपा का स्रोत बनने को कहते हैं, जो कि हमारा इस धरती पर भेजे जाने की वास्तविकता को अभिव्यक्त करता है, क्योंकि कोई भी वृक्ष अपने फलों का रसास्वादन नहीं करता और ना ही कोई नदी स्वयं अपने जल का पान करती है, बल्कि वे सदैव दूसरों के लिए होते हैं। श्रोताओं, इस भांति दूसरों के लिए आशीष और कृपाओं का माध्यम बनने में हम अपने लिए ईश्वर की आशीष और वरदानों को प्राप्त करते हैं। श्रोताओं, कलुसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें पहले पाठ को गहराई से समझने हेतु मदद करता है, जो कहता है कि हम बपतिस्मा में यीशु के संग दफनाए और पुनर्जीवित किए गए हैं। ईश्वर ने अपने बेटे के पुनरुत्थान में हमें पापों से मुक्त करते हुए एक नया जीवन प्रदान किया है। यह इसलिए जिससे हम ख्रीस्त के पुनरुत्थान और पाप मुक्ति में मिले नए जीवन का साक्ष्य दूसरों को दे सकें। अतः हम ख्रीस्त में मिले जीवन के उपहार और उनकी आशीष और कृपाओं को दूसरों के संग बांटने हेतु बुलाए गए हैं। हमें अपने को दूसरों के लिए देने हेतु कहा जाता है, क्योंकि हमें भरपूर दिया गया है। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हम इन बातों को स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त पाते हैं। यीशु ख्रिस्त अपने चेलों के विनय करने पर अपने पिता के पास उन्हें प्रार्थना करने को सिखलाते हैं। इस प्रार्थना में हम सर्वप्रथम अपने को देने की बात सुनते हैं। अतः हे पिता की प्रार्थना के पहले भाग में हम ईश्वर को अपना हृदय अर्पित करते हुए उनके नाम की महिमा और स्तुति करने को कहे जाते हैं, जो अपने को देना है। हम उनकी योजना और इच्छा पूरी होने की कामना करते हैं। यह ईश्वरीय चाह को अपनी चाह बनाना है, जहां हम अपने हृदय को उनके हृदय में रखते हैं। इस भांति हमारा अपने को उन्हें देना हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यीशु का दृष्टांत हमारे लिए पुनः सुसमाचार के संदेश को पूरी तरह स्पष्ट करता है। रात्रि पहर में एक मित्र का दूसरे मित्र के पास रोटी मांगने जाना स्वयं की जरूरत को नहीं, बल्कि मेहमान आए मित्र की आवश्यकता को प्रस्तुत करता है। अतः अपनी प्रार्थना में हम कैसे दूसरों की जरूरतों का ख्याल करते हैं, हमारा ऐसा करना हमें ईश्वर की सच्ची संतान बनने को मदद करता है, क्योंकि स्वयं यीशु ख्रीस्त ने हमारे जरूरतों की पूर्ति हेतु अपने को निछावर कर दिया। आइए हम माता मरियम ईश्वर की कुमारी माता से निवेदन करें कि वे हमें अपनी तरह संवेदनशील होने में मदद करें, जिससे हम अपने जरूरत में पड़े भाई बहनों की सुधि लेते हुए उनके लिए ईश्वर से सदैव निवेदन कर सकें।
अधिकार गगन अवनी देना हमको
वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। पाक्स क्रिस्टी अर्थात ख्रीस्त की शांति नामक संगठन की अमरीकी शाखा की आम सभा में भाग लेने वाले सदस्यों को शनिवार को संबोधित एक संदेश में संत पापा लियो 14वें ने कहा कि विश्वव्यापी वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर अहिंसा को प्रोत्साहन देने वाले प्रयास और अधिक जरूरी हो गए हैं। संयुक्त राज्य अमरीका के मिचिगन प्रांत स्थित डेट्रॉइट शहर में जुलाई माह में पाक्स क्रिस्टी शांति संगठन की अमरीकी शाखा की आम सभा जारी है। संत पापा लियो ने कहा, इस समय विश्व के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं, जिनमें व्यापक सशस्त्र संघर्ष, लोगों के बीच विभाजन और जबरन आप्रवास की चुनौतियां शामिल हैं। ऐसी परिस्थिति में अहिंसा को बढ़ावा देने के प्रयास और भी अधिक आवश्यक हैं। इस वर्ष विगत 8 मई को उच्चरित विश्व और रोम शहर के नाम अपने पहले संदेश के शब्दों का उल्लेख कर संत पापा ने कहा, हमें यह याद रखना चाहिए कि क्रूस पर चढ़ाए जाने की हिंसा के बाद पुनर्जीवित मसीह के प्रेरितों को कहे पहले शब्दों में शांति की पेशकश की गई थी। शांति जो निहत्ता और निरस्त्र, विनम्र और दृढ़ है। तदुपरांत इसी वर्ष 17 मई को इतालवी कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन को संबोधित शब्दों का स्मरण कर संत पापा लियो ने कहा, येसु अपने अनुयायियों को विश्व में प्रेषित करते रहते हैं ताकि वे अपने दैनिक जीवन में शांति के निर्माता बन सकें। अस्तु पल्ली मोहल्लों और विशेष रूप से सीमांत क्षेत्रों में मेल मिलाप में सक्षम कलीसिया का उपस्थित और दृश्यमान होना और भी अधिक महत्वपूर्ण है। संत पापा ने मंगल याचना की कि अमेरिका के पाक्स क्रिस्टी का यह समागम सभी सदस्यों को अपने स्थानीय समुदायों को शांति के घर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसे घर जहां शिक्षा पाई जाती है कि बातचीत के माध्यम से शत्रुता को कैसे कम किया जाए, जहां न्याय का पालन किया जाता है और क्षमा को महत्व दिया जाता है। संत पापा ने कहा, इस प्रकार पाक्स क्रिस्टी संगठन के सदस्य बहुतों को अपने भाइयों और बहनों के साथ शांति में जीवन यापन करने के लिए संत पॉल के निमंत्रण को स्वीकार करने में सक्षम बनाएंगे और सबके साथ मेल मिलाप बनाए रखेंगे। वियतनाम के प्रथम शहीद धन्य एंड्रू फू येन के शहादत की 400वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष में संत पापा लियो 14वें ने वियतनामी धर्म शिक्षकों की आम सभा को एक वीडियो संदेश प्रेषित किया। संत पापा लियो 14वें ने कहा, धर्म शिक्षकों के संरक्षक संत धन्य एंड्रू फू येन से हम मध्यस्थता की प्रार्थना करें ताकि उनकी तरह ही हम भी कठिनाइयों के क्षण में अडिग विश्वास के साथ येसु नाम को पुकार सकें। संत पापा का संदेश वियतनाम के हो ची मिन सिटी में धन्य एंड्रू फू येन के पर्व दिवस पर गुरुवार को एकत्र देश के लगभग 500 से अधिक धर्म शिक्षकों को प्रेषित किया गया था। यह वीडियो संदेश वैटिकन रेडियो के प्रार्थनालय से प्रत्यक्ष स्ट्रीमिंग के द्वारा वियतनामी और अंग्रेजी भाषा में वैटिकन मीडिया के यूट्यूब चैनल से प्रसारित किया गया। धर्म शिक्षकों की सभा में साइगोन के महाधर्माध्यक्ष तथा वियतनामी कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष जोसेफ न्यूयेन नांग भी शामिल थे। संदेश में संत पापा लियो ने धन्य एंड्रू यू फेन को वियतनाम के महान पुत्र निरूपित कर कहा कि इस धर्म शिक्षक और शहीद का साक्ष्य हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक उद्बोधन क्रिस्तुस विवित में लिखे शब्दों को उद्धृत कर संत पापा लियो ने कहा कि एंड्रू को उनके विश्वास के लिए कैदी बना लिया गया था और विश्वास का परित्याग करने से इनकार करने के कारण मार डाला गया था। मरते दम उन्होंने केवल एक शब्द कहा और वह था येसु। इसी प्रकार संत पापा लियो ने अपने पूर्ववर्ती संत जॉन पॉल द्वितीय द्वारा 5 मार्च 2000 को एंड्रू फू येन की धन्य घोषणा के उपलक्ष्य में अर्पित ख्रीस्त्याग प्रवचन में कहे शब्दों को याद किया, जिन्होंने कहा था, केवल 19 वर्ष की आयु में अपना जीवन देकर एंड्रू ने हमारे प्रभु को प्रेम के बदले प्रेम लौटाने के मसीह के आह्वान का जवाब दिया है। गाजा में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक लोकोपकारी संगठन के चिकित्सकों ने गाजा में भूख से मरने वालों की व्यथा की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा है कि गाजा में बच्चों, महिलाओं और वयोवृद्धों की स्थिति अमानवीय बनी हुई है तथा प्रतिदिन लोग भूख से मर रहे हैं। उनका कहना था कि यह धीरे धीरे गरिमा का हनन है। हम राहत कर्मी भी हर 2 दिन में खाना खाते हैं क्योंकि खरीदने के लिए अब और खाना नहीं बचा है। डॉक्टर कैरोलिन विलेमन कहती हैं, यह जानबूझकर किया गया फैसला है कि खाने की तलाश में खड़े लोगों पर गोली मार दी जाती है। गाजा में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संगठन के उपनिदेशक डॉक्टर मोहम्मद अबू मुगैसिब ने साक्ष्य देते हुए कहा, भूख से मानव शरीर इस तरह नष्ट हो जाता है। पहले 6 से 24 घंटों में रक्त शर्करा का स्तर गिर जाता है। शरीर जीवित रहने के लिए संग्रहित ग्लाइकोजन को जलाता है। 1 से 3 दिनों के भीतर ग्लाइकोजन भी समाप्त हो जाता है और वसा मस्तिष्क को ऊर्जा देने के लिए कीटेन्स में परिवर्तित हो जाती है। शरीर उत्तर जीविता की स्थिति में प्रवेश कर जाता है। 3 से 5 दिनों के भीतर मांसपेशियां क्षीण होने लगती हैं। शरीर जीवित रहने के लिए अपने ऊतकों, यहाँ तक कि हृदय का भी बलिदान कर देता है। यही वह समय होता है जब शिशु रोना बंद कर देते हैं। वे बताते हैं कि डॉक्टर्स और राहत कर्मी भी भूख के कारण मर रहे हैं। इसी बीच योजना संचालक डॉक्टर कैरोलिन विलेमन बताती हैं कि मई माह के बाद से डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अब जर्जर हो चुके अस्पतालों में भूख से पीड़ित मरीजों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 26 जुलाई को तीसरे दिन भी संघर्ष जारी रहा, जहां वर्षों की सबसे खूनी लड़ाई में मरने वालों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है और 1,70,000 लोग विस्थापित हो गए हैं। लंबे समय से चल रहा सीमा विवाद 24 जुलाई को जेट, तोपखाने, टैंक और जमीनी सैनिकों के बीच भीषण संघर्ष में बदल गया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 25 जुलाई को इस संकट पर एक आपात बैठक बुलाई। सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद कंबोडिया के संयुक्त राष्ट्र राजदूत चिया क्यो ने कहा कि उनका देश युद्ध विराम चाहता है, जबकि कार्यकारी थाई प्रधानमंत्री फोम थाम वेचाया चाई ने चेतावनी दी है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो वह युद्ध में बदल सकती है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।